نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنبسط القرآن، قرآن کی جھلکیاں. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آج اس میں سے ہم کریں گے اتلو ما اوحیا، پارا نمبر 21. چلیے پارا نمبر 21 کے مضامین دیکھتے ہیں. پہلا حصہ سورة عنکبوت کی بقیہ آیات پہ محیط ہے، جس میں چار چیزیں ہیں: تلاوت اور نماز. خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ شروع میں ہی آپ کو دکھے گا، پارے کے آغاز میں ہی یہ چیز دکھتی ہے. دوسری بات، نماز کی فضیلت، اور پھر کفار کی ہٹ دھرمی اور دنیا کی بے ثباتی، یعنی ناپائیدار ہونا. پھر سورت کا دوسرا حصہ سورت روم ہے، اس میں مکمل اس میں چار چیزیں ہیں. نمبر ایک، دو پیشن گوئیاں یعنی پروفیسز، فور کاسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر دونوں پوری بھی ہوئی تھیں. پھر عیسائی ایران کو شکست دیں گے اور مسلمان مشرقین کو شکست دیں گے. ایک ہی دن میں یہ دونوں کام ہوئے، یعنی مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی اور ایرانی جو تھے وہ مغلوب ہوئے اور رومنز ان پر غالب آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سات نشانیاں ہیں، اس صورت میں ڈھونڈیے گا. پھر اس کے بعد تیسرا حصہ سورت لقمان ہے، اس میں مکمل جس میں تین بڑی بڑی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چار دلائل ہیں، لقمان کی اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں ہیں، اور پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، آخر میں ہے سورت کے. پارے کا چوتھا حصہ جس میں پوری سورت سجدہ ہے، اس میں چار چیزیں: قرآن کی عظمت، توحید، قیامت، رسالت. اور پھر اس کے بعد پارے کا پانچواں حصہ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات ہیں، اس میں جس میں زمانہ جاہلیت کے غلط خیالات کی تردید ہے اور دو غزوات کا تذکرہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے 69. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کوئی اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے؟ سنیے ذرا. پڑھ کر سنائیے ان کو جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. نماز کی تاثیر، نماز کا ایک اثر. دوا کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس پارے کے آغاز میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے. بغیر کسی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کوئی کتاب پیش کر دے، یہ کسی کے بس میں ہی نہیں. اس لیے مان جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو اللہ ضرور اپنے راستے دکھاتا ہے. یہ سورہ عنکبوت کی بالکل آخری آیتوں میں آئے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور پھر اسی طرح سے کفار اللہ کی طاقت اور اختیارات سے ناواقف تھے. بعض لوگ کلام دل فریب یعنی لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرائی جاتی ہے. 45 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. آیت 46 سے 48، احسن طریقہ بحث، یعنی اول تو بحث کرنی نہیں، کرنی پڑ جائے تو کیا طریقہ ہے اس کا. آیت 49 سے 51، عظمت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 52 سے 55، حق کو جھٹلانے والوں کا بدترین انجام. اور آیت 56، ہجرت کا حکم. یاد رکھیے یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہے تھے، اشارے ہو رہے تھے کہ اب جگہ یہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ لوگ اب اس قابل نہیں کہ اللہ کا نبی ان میں موجود رہے. آیت 57، موت کی ہجرت ہر نفس کے لیے. یعنی عام طور پہ ہمیں ہجرت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہماری جگہیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے اندر ایسٹس ہیں. اللہ کہتے ہیں ایک ایسی ہجرت ہوگی جس کے لیے تمہیں 1 کلو وزن بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون. سوچئے، ایم آئی ریڈی ٹو ڈائی اینی ٹائم؟ पाकिस्तान इंडिया जाना वो पहले से तैयारियां, इधर सामान उधर सामान, शॉपिंग है ये वो, क्या हमने मरने के बाद के लिए तैयारी कर ली है? फिर आयत 58-60, हिजरत के बाद सब्र और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है, क्योंकि मुश्किलात होती हैं, हिजरत आसान थोड़ी है, लेकिन अल्लाह आसान करते तो आसान है। फिर 61-63, हक वाज़ह करने वाले दो सवालात, सोल सर्चिंग क्वेश्चंस। 64, दुनिया की जिंदगी की हकीकत, वमा हाजिहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुं वलाएब, तमाशा और खेल। आयत 65, जो खुशकी में बचाता है वही पानी में बचाता है। मुशरिकीन ने मक्का का शिर्क किया था कि हमारे खुदा जो हैं, जो उनके नाम नेहाद बुजुर्ग थे या बुत थे, वो खुशकी पे तो मदद करते हैं हमारी, पानी में नहीं जा सकते बेचारे, कि उनको तैरना नहीं आता या उनके पास कोई समंदरी जहाज नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि जो तरी में नहीं बचा सकते वो खुशकी में कैसे बचा सकते, और जो पानियों में जाके बचाता है भला उसको खुशकी में बचाना नहीं आता। यानी शिर्क के ऊपर उनके चोट है असल में। फिर 66-68, अल्लाह ताला का करम बंदों का जुल्म, ना शुक्रपन। 69, आखिरी आयत है सूरत की, हिदायत जिद्दोजहद करने वालों को मिलती है, ये है वो आयत, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलन। इसी पे शायद किसी उर्दू वाले ने भी कहा ना कि ढूंढने वालों को हम दुनिया नहीं देते हैं, हमारा एक मुहावरा के ढूंढने से तो अल्लाह भी मिल जाता है, ये है वो आयत। जो जिस रास्ते में मेहनत करेगा उसी में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो क्या पता चला, बुराई से बचने का तरीका, कुरान और नमाज में दिल लगाइए, हक को जुटलाने वाला सबसे बड़ा जालिम है, अहले किताब से बहस करें मगर उम्दा तरीके से, मुश्रिकीने मक्का की बदएतकादी का जिक्र है, रिस्क की तंगी और कुशादगी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह की जात को है, और अल्लाह की खातिर मुजाहिदा यानी मेहनत करने वालों के लिए अल्लाह की रहनुमाई मौजूद है। आगे है जी सूरत रोम, 30th सूरा है, 60 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रोम, मुसलमानों के लिए खुशखबरी, आयत 1-6 में। 7-8, आखिरत वाकई होने के दो सबूत, कुरान इतना लॉजिकल है ना, सिर्फ आपको आयतों के टॉपिक से अंदाज़ा हो रहा है कि ये सिर्फ वर्सेस टू रीड नहीं है, टू थिंक भी है। फिर 9-11, सरकश कौमों के इंजाम से सबक हासिल करो। 11-16, अहवाले आखिरा यानी आखिरत में क्या होगा, क्या पता चला, मुजरिमों का हसरत ज़दा दिन होगा, नेकों और बदों के लिए अलग अलग गिरोह होंगे उस दिन, शिर किए जाने वाले अपने शरीकों के मुनकर होंगे, सुबह और शाम की तस्बीह और नमाजों का तذکرہ, यानी रंग और जुबानों में इख्तलाफ दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। फिर आयत 17-19, सुबह शाम की दुआएं, यानी ये जो आयतें हैं ना, ये हम सुबह शाम की दुआओं में भी पढ़ते हैं। फिर आयत नंबर 20-21, शादी का बंधन, कौन का बंधन, शादी का मकसद बच्चे नहीं, सुकून इत्मीनान, खूबसूरत आयतें, मेरा घर मेरी जन्नत, कभी शादी का मौका, मोस्टली लोग यही आयतें पढ़ते हैं, पूरी सीरीज़ है इस पे, मेरा घर मेरी जन्नत की, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पुरानी वेबसाइट से लेके मेरा ले आज भी उस पे 8-10 लेक्चर हैं सिर्फ इसी मौजू पे, नए रिश्तों को कैसे निभाओ, शादी से पहले ये सुन लीजिए, नई जिंदगी के नए तकाजे, आज बच्चियों को ये बहुत सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन बेचारियों को तो मौका भी नहीं मिला औरत बनने का, घरदारी का, पढ़ते पढ़ते में अखीर फिर उनकी शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल कुरान ने हर मौजू को टच किया है। फिर आए 22-23, अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरतें और रहमतें। 24-27, मरने के बाद जी उठना है। 28-29, शिर्क की नफी एक मिसाल के जरिए, और 30-32, फितरत की पुकार, अल्लाह की मुकम्मल इताअत, यानी किसी बच्चे को पैदा होने के बाद कुछ भी ना सिखाया जाए ना, तो उसकी इंस्टिंक्ट, उसकी फितरत उसको बताएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वही वादा है अल्लाह से सूरत अल अराफ में पीछे हमने देखा। फिर आयत 33-37, انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل، امبیلنس ایٹیچیوڈ، 38 سے 40، قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی، یعنی اللہ کا قرب پانے کے طریقے، آیت 41 سے 42، قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، 43 to 45، عذاب سے بچنے کی راہ، 46 سے 47، اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں، 48 سے 53، بارش اور اس کی برکات، 54، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندے کی بے بسی. ہم تو اپنے اس وجود پہ بھی قادر نہیں ہیں کہ اس کو بوڑھا ہونے سے روک سکیں، 55 سے 58، روز قیامت مجرموں کی حسرتیں، 59، دلوں پر مہر کن کے لگتی ہے، 60، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی. کیا پتہ چلا پوری سورت کے اینڈ پہ؟ ظالم جانتے بوجھتے اپنے تخیلات یعنی اپنی سیلف امیجینیشن پر چلتے ہیں، یعنی بیس لیس کہہ لیجیے کریڈز ہیں ان کے. فرقہ واریت مشرقین کا طریقہ تھا، لوگوں کے اپنے اعمال سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. بڑی اہم آیت گزری ہے اس حصے میں، زہر الفساد فی البر والبحری، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں سے فساد برپا ہو گیا ہے، اور آج آپ کو اس چاروں طرف یہ دکھتا ہے. پھر اپنا رخ مستقیم اور مستحکم دین کی طرف رکھیں، نہ سمجھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے. آگے جی سورت لقمان، 31 نمبر کی سورہ، 34 آیات ہیں، اور لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کی نسل سے تھے، غلام تھے لیکن صاحب حکمت تھے. جیسے ہمارے کلچر میں علامہ اقبال کو حکیم کہتے ہیں نا، تو عربوں کے پاس سے ایک صحیفہ لقمان ہوتا تھا، سوید بن سامت نام کے ایک صحابی جن کو کامل کہا کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اس بکلیٹ میں سے کچھ پڑھا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں، تو کیوں ایک غیر نبی کا نام قرآن میں اور سورت اس کے نام پہ؟ آپ دیکھیے انسانوں کے ناموں پہ جو سورتیں، واحد نام ہے جو ان کا جو نبی نہیں ہے، اور مریم جو نبی تو نہیں لیکن نبی کی ماں تو ہے نا. تو کیا پتہ چلا کہ حکمت ایک بہت بڑی دولت ہے. ان کی حکمت کی دلیلیں ہم دیکھیں گے آیت 1 to 5 میں. قرآن حکیم سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ 6 to 9، قرآن حکیم کے حوالے سے دو طرز عمل یعنی دو مختلف رویے. آئے 10 to 11، تخلیق باری تعالیٰ کے شاہکار، یعنی کبھی آنکھیں کھول کر دنیا کو تو دیکھو. آئے 12 سے 19، حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں، حکمت کا تحفہ شکر. ابھی چند دن پہلے اس پہ لیکچر بھی ہوا ہے، آن لائن پہ موجود ہے، سن لیجئے گا، ہمارا اٹلانٹا سے ہوا تھا، حکمت اور شکر گزاری کے نام پہ. پھر آئے 20 سے 22، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار. 23 to 24، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی. دیکھیے جب اللہ کے رستے میں بندہ ستایا جاتا ہے نا، تو جواب بھی اوپر سے ہی آتا ہے. آئے 25 سے 32، عظمت باری تعالیٰ، توحید کے دلائل ہیں سب ان میں. 33، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اور آئے 34، پانچ باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کیا پتہ چلا سورت کے اینڈ پہ لقمان کی شخصیت سے کہ شکر گزار انسان اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور ان کی حکمت کی دلیل کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. چال میں اعتدال اور آواز میں پستی کا حکم. اللہ کی باتیں کبھی نہیں ختم ہونے والی. اور اس دن سے بچنے کا حکم جب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. اور غیب کی ان پانچ باتوں کا ذکر جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی ڈال دے. آگے ہے جی سورت سجدہ، 32 نمبر کی سورہ، 30 آیات. یہاں ایک بات نوٹ کریں अल्लाह के नबी रात को सूरह सजदा भी पढ़ते थे और सूरह मुल्क भी। ऐसे उसकी भी 30 आयतें, इसकी भी 30 आयतें, महीने के दिन भी 30 ही होते हैं, वल्लाहु आलम। चलिए देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबी ला रैब फी। सूरत बकरा से मिलता जुलता आगाज है सूरत का। टॉपिक है अजमते कुरान हकीम। 4 to 5, अल्लाह खालिक और मुदब्बिर कायनात है, यानी अल्लाह कायनात को बनाने वाला और चलाने वाला भी है। 6 to 9, अजमत इंसान। 10 to 14, मुजरिमों का रोज़ क़्यामत बुरा अंजाम होगा। 15 to 19, शब बेदारियों और क़ुरबानियों का सिला तसव्वुर से बालातर। क्या कहे अल्लाह ने इसमें, फला तालम नफ्सो मा उख्फी लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया। वो जन्नत किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल पे उसका ख्याल तक नहीं आया। यकीन ना आए तो कुरान की ये आयत पढ़ लो। आयत 20 से 22, बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब आते हैं। ये आयत लिख लें, अलग से सुनिएगा इसको। अल्लाह हमारे गुनाहों पे सिर्फ हमें आखिरत में नहीं पकड़ेगा, पहले दुनिया में पकड़ता है। ये जो बीमारी आई हुई है, हमें नहीं पता हमारी किस सरकशी की वजह है। हमारा बच्चा सरकश हो गया, पता नहीं हमने क्या बड़ी को खरमस्ती की। कभी औलादों के गम, कभी माल के गम। से कोई आयत पूछ सकता है, कुरान की वो कौन सी आयत है जिससे पता चलता है कि इंसान को उसके गुनाहों की वजह से दुनिया में भी आजमाया जाता है? तो वो ये वाली आयत है। फिर आयत 23 से 27, इमामत का एजाज किससे हासिल होता है? 28 से 30, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनियाज होने का हुक्म दिया गया, यानी आप अपना काम कर चुके, अब इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। क्या पता चला इस सूरत से? जन्नत की नेमतों का जिक्र और ईमान लाने वालों के आमाल और जज़ा का जिक्र है। अल्लाह ताला हमें उस जन्नत को पाने के लिए मेहनत और कोशिश करने वाला बना दे। आगे कुछ आयात सूरत अल अहज़ाब की इस बारे के अंत तक। 33 नंबर की सूरा और 73 आयात हैं। देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी युत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। आप देख रहे हैं सूरत नूर का आगाज बड़ा डायरेक्ट, सूरत अनज़लनाह व फरदनाह, बिल्कुल वही अंदाज है इस सूरत में भी। पहली 3 आयात, टॉपिक है जलाली असलूब में अहकाम शरीयत पर अमल का हुक्म, यानी अल्लाह का जलाल बरस रहा है इस सूरत में। आयत 4 to 5, दो सख्त अहकाम शरीयत। लिख लें, सूरत अल अहज़ाब मुआशरे की रस्मों रिवाज का कलाकमा। मुंह बोले बेटे की बीवी को बहू की तरह ट्रीट करते थे। इतनी बड़ी ये आदत बन चुकी थी कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश में डालकर इस रस्म को तोड़ा। सबको वाकया मालूम है, आज हमारे माशरे में भी रस्में पहाड़ों की तरह गुंधी हुई हैं। सारी चीज़ें समझ आ जाती है, लेकिन फिर धान के पान उधर ही खड़े हैं। लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे। अच्छा चुप करो ना, जो हो रहा है होने दो, एक हमारे करने से क्या होगा। ये सूरत अल अहज़ाब पढ़िए। नबी पे इतना मुश्किल लगा था ये हुक्म कि कभी अल्लाह मुझे ना ये हुक्म दे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अपनी बहू से निकाह कर लिया। लेकिन निकाह नहीं नबी, आपको करना पड़ेगा। आप जैसी मजबूत शख्सियत ये कानून तोड़ सकती है, वरना नहीं। आज भी देखिए, स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने खानदान से बेकार रस्में निकालना चाहते हैं, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। और आप तो बाहर रहते हैं, आपकी तो मान भी लेंगे। जो बाहर रहते हैं ना, उनकी वजह से अल्लाह इज्जत बना देता है अपने मुल्कों में कि बाहर से आए हैं। एक दफ़ा बाहर से जाकर आप करें, हाँ ज़रा सुन्नत के मुताबिक शादी, वो कहेंगे अमेरिका से आए हो कि सऊदीया से आए हो। लोग कहते हैं ये बाहर जाके बिगड़ गए हैं, इनको किसी का डर ही नहीं रहा, इनको क्या पता, इन्होंने कोई खानदानों में थोड़ी रहना है। सुन ले बातें, बोला तखाफून लौमतलाइम। बहरहाल आयत 6, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए इनकी जानों से बढ़कर हैं। आयत 7 to 8, अंबिया से खसूसी अहद। ये आयत नोट करें, सूरत अल आराफ में हमने वो आयत ली थी जिसमें अल्लाह की रबूबियत का वादा लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ये आयत दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वादा लिया गया। फ़र्क क्या दोनों में? अल्लाह के एक होने का वादा सारी इंसानियत से लिया, अव्वलीन वल आखरीन, बट नबी की नबूवत का वादा सिर्फ अम्बिया करम से लिया। वो रिप्रेजेंटेटिव थे अपनी उम्मतों के। इस वादे की वजह से आज क्रिश्चियंस एंड ज्यूज और दुनिया के हर मजहब वालों को मुसलमान होना पड़ेगा, क्योंकि उनके नबियों ने यह वादा किया था अल्लाह से कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कौमों को कह कर जाएंगे। खुद कहते थे कि अगर हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम उनको ले लेना और हमें छोड़ देना। आज देखिए कौमों ने दीनों का क्या बिगाड़ कर दिया। बहरहाल आयत नंबर 9 से 11, अब यहाँ से गज़वे अहज़ाब शुरू होता है, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम भी है। गज़वे अहज़ाब पर इजमाली तबसरा, यानी तायराना, जैसे कहते हैं ना, बर्ड आई व्यू है, मैदान दिखाया जा रहा है अहज़ाब का। आयत 12 to 15, गज़वे अहज़ाब में मुनाफिकों का तर्ज़ अमल, और 16 से 18, क्या महाज़ जंग से फरार मौत से बचा लेगा? नहीं बचा सकता। आयत 19 से 20, मुनाफिकत का सबब माल और जान की मोहब्बत। इज़ इट ट्रू? यही दो पाँव की बेड़ी हैं, अल्लाह इनको खोल दे। 21, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। इतनी बात से क्या पता चला? अहले ईमान का पूरी इस्तकामत के साथ मैदान में डटे रहना, अल्लाह ताला की फरिश्तों और तेज़ आंधियों से अहले ईमान को मदद देना, अल्लाह ताला से मुलाकात पर यकीन रखने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, और इसी तरह से घरेलू, समाजी, इनफरादी, यानी सोशल लाइफ हो या इंडिविजुअल लाइफ हो, इसके गुजारने के तरीके किससे सीखने हैं? नबी से। हमने क्या किया? नमाज के नाम पे लड़े, तुम्हारी नमाज मेरी नमाज, वो ऐसे पढ़ते थे, यानी नबी से नमाज का तरीका ही लिया, सल्लु कमा रही तुम उन्नी उसली, उस पर ही 4 मसलक बना दिए। बस बहुत हो गया तो रोजे का तरीका ले लिया, हज का ले लिया, बाकी शादी इंडिया से। हमारे किबले बदलते हैं, कहीं हमारा किबला दिल्ली की तरफ है तो कहीं न्यूयॉर्क की तरफ है तो कहीं सिडनी की तरफ है। जीते मरते दूसरों की मर्जी के हैं, और जहाँ दीन की बात आती है तो अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे झगड़ने लगते हैं। मुझे बताइए ऐसे मुसलमानों से कौन इम्प्रेस होगा? और आगे फिर आयत 22 से 24, गज़वे अहज़ाब के मौके पर मोमिनों का तर्ज़ अमल बड़ा प्यारा था। सुकून से बैठे हुए थे, मुनाफिक हौल रहे थे और ईमान वाले इंजॉय कर रहे थे। आयत 25, कुफार के लश्करों की जिल्लत आमेज़ शिकस्त। 26 से 27, बनू कुरैज़ा की जिल्लत आमेज़ तबाही, यानी यह एक और जंग थी उसकी तरफ इशारा। आयत 28 से 30, अज़वाजे मुतहरात का खसूसी मामला, यानी यहाँ से पारा अगला भी जहाँ शुरू होगा तो नबी की बीवियों को रोल मॉडल बनाकर हम ख़वातीन के लिए इनको उसवा हसना बना दिया। क्या पता चला इस पूरे पारे से? हर इंसान अपने कुफर का और अपनी तौहीद का खुद जिम्मेदार है। हर बुराई से बचने का हल नमाज है। अल्लाह को पूरे इखलास से पुकारें, लगवियात से बचें, दूसरों की बात गौर से सुने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, लिहाजा उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।